शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत सुंदर राज बताया है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस ड्रामा के अंदर 3/4 सुख भोगते हो। अगर आधा सुख हो और आधा दुख हो तो वो ड्रामा भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चे, वैसे भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं और हर एक ब्राह्मण बच्चा भी अपनी लाइफ के अंदर देखे कि कलयुग अंत और जब से बाबा का बने हैं उससे पहले भी देखें, जीवन में दुनिया की भेंट में इतने दुख नहीं थे, इतने कष्ट नहीं थे, लेकिन केवल मन के अंदर रियलाइजेशन था कि ये कुछ और चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जो हो 3/4 सुख भोगते हो। ये तुम बच्चों का ड्रामा के अंदर एक बहुत सुंदर पार्ट भरा हुआ है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि देखो, सारा दिन उमंग उत्साह में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आप हमें क्या से क्या बना देते हो? ओहो बाबा आप कितने मीठे हो। केवल अमृत वेले नहीं, अमृत वेले तो बाबा से बहुत अच्छी मीठी मीठी रूहान करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सारे दिन में ये मीठी मीठी रूहान करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव भी करते रहेंगे। और तीसरी बात धारणा के लिए बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे प्यार के सागर के बच्चे हो और सबसे प्यार से बात करनी है, मुख से कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। फिर बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते हैं, अगर दुख देंगे तो क्या होगा? कभी किसको दुख देते हैं ना, तो उसको देने से पहले खुद दुखी हो जाते हैं। दुनिया में तो कहते हैं ना, दुख देंगे दुखी होंगे, लेकिन ये तो एक वैसे ही कॉमन सी बात है, किसी को दुख देते हैं उसको दुख मिले या ना मिले पहले खुद दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना कड़वे बोल बोलो ना किसी को दुख दो, सबसे बहुत प्यार से बात करो। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 29 जनवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें अपने योग बल से विक्रम विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें अपने योग बल से ही विक्रम विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारी सेवा है। आज का प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? इसका उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। वैसे तो पूरा ही कल्प सुख पाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुख जो है, बाबा कहते तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवानो वाच्य। भगवान ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए कहा जाता है सूक्ष्म वतन। बाबा का ना सूक्ष्म आकार है ना आकार है साकार, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म वतन वासियों को कहेंगे सूक्ष्म वतन वासी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वासियों को भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन में है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल पांच तत्वों का शरीर होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन में तो लाइट का शरीर होता है, ये पांच तत्वों का या ये शरीर तो होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां पर तो आकारी शरीर है, सूक्ष्म वतन में ये स्थूल पांच तत्वों का शरीर होता नहीं है, ये पांच तत्वों का शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। अंतर साकार दुनिया में वैसे भी लौकिक में क्या कहते हैं, ये शरीर मिट्टी का पुतला है। सूक्ष्म वतन में क्या है, शरीर जब वो लाइट का है तो वहां उनको मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी अथवा देवता धर्म वाले भी हैं तो मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आश्री अवगुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशाल्य में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, उसमें शिवालय बोलेंगे नहीं, उनको यही पता नहीं है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वहां शिवालय नहीं कहेंगे। अभी संगम युग के अंदर ये द्वापर से सतयुग को शिवालय कहेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन या सूक्ष्म वतन में नहीं होता। सृष्टि के आदि में धरती तो यही है, लेकिन आदिकाल सतयुग है। बाबा कहते मूल वतन सूक्ष्म वतन में सतयुग नहीं होता है, कोई मूल वतन या सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन हुआ बाबा बता रहे, कब स्थापन हुआ, संगम पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी ये दुनिया है ही पति तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी कहा जाता है ये दुनिया पति तमो प्रधान है, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है, कहां सतो प्रधान इतनी अच्छी दुनिया और कहां एकदम गंदी बन जाती है। तो फिर बाबा कहते फिर सतो प्रधान कैसे बनती है, तुम बच्चों के योग बल से। अब नई दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, बाबा बनवाते लेकिन तुम बच्चों के योग बल से। नई दुनिया सतो प्रधान फिर कैसे बनती है, तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। अब आप देखिए कोई अच्छी चीज होगी तो उसके लिए स्थान भी तो अच्छा बनाएंगे, चीज खराब होगी तो स्थान ठीक नहीं होगा। तो बाबा कहते तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया चाहिए। पवित्र दुनिया, पवित्र के लिए तो फिर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया कौन स्थापन करते हैं, बाबा ने कहा रावण करते, रावण तो ऑटोमेटिकली आ जाता, स्थापन ही नहीं करता है। वो आया और ऑटोमेटिकली रावण राज्य बन जाता है, पतित हो जाता है। पति दुनिया रावण स्थापन करते हैं, ये बातें कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ये पांच विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को क्यों याद करें? पांच विकार आए तब दुखी हुए, तब तो बाप को याद करना शुरू किया। ये पांच विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को क्यों याद करें? ये बातें मनुष्य कोई भी जानते नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं ही दुख हरता और सुख करता हूँ। रावण का पांच विकारों का पुतला बना दिया। रावण का पुतला तो हर साल देखते हैं ना, बनाते हैं पांच विकारों को, अदर्शीस बना देते हैं, उसके ऊपर गधे का सिर भी रख देते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बुद्धि ऐसी मारी गई है। तो बाबा कहते हैं, रावण का पांच विकारों का पुतला बना दिया है दस शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सुबह ऐसे नहीं, अब दूसरा राज बता रहे बाबा कहते, द्वापर के शुरू में नहीं करते हैं, बहुत टाइम बीत जाता है द्वापर का, तो लास्ट में आकर के रावण का वो बनाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाना शुरू करते हैं, नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते। बाबा ने कई बार भी बताया है, द्वापर के बाद जब खुदाई करते कुछ न कुछ निकल आता है और फिर उस बातों को पढ़ लेते हैं। और कोई कोई ऐसे भी आते हैं, कई कई मत मतांतर वाले, वो राज समझाते ना समझने के कारण स्थूल बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई दुख देते हैं तो क्या करते हैं? दुनिया में आजकल क्या करते हैं? कोई दुख देते हैं, नहीं कुछ होता है तो उसकी एफजी बना करके जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब कोई दुख देते हैं तब उनकी एफजी अथवा पुतला बनाते हैं। तो यहाँ मनुष्यों को जब दुख मिलता है तब ये रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को तो, अब बाबा बता रहे हैं, तुम बच्चों को तो 3/4 सुख रहता है, अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहा? 3/4 तो क्या, मैं कहेंगी कि कलप के अंत तक भी सुख है ना, के कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं होगा जो बहुत दुखी। दुनिया की भेंट में कहेगा मैं बहुत दुखी, लेकिन दुनिया की भेंट में 100 गुना सुखी रहा है। 3/4 से भी ज्यादा सुख लेते हैं, लेकिन अंश मात्र ही दुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते, तुम बच्चों को तो 3/4 सुख रहता है, अगर आधा सुख हो तो आधा दुख हो तो मजा ही क्या रहा? बाप कहते हैं, तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ ही नहीं सकता है कि सृष्टि क्यों बनी, क्यों बनी, कब बनी, इसका शुरुआत कब है। बाबा कहते कोई भी पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये तो अनादि बना हुआ है। ये कोई पूछ ही नहीं सकता है कि ये सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी, पूरी तो होना ही नहीं, चक्कर चलता ही रहेगा। ये चक्र फिरता ही रहता, घड़ी में भी जब 12 आएगा तो 12 के बाद एक आएगा ना, तो ऐसे ही बाबा कहते चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जो संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते ही नहीं है, इतना भी नहीं समझते हैं। कौन सी बात? कि बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, है दोनों अलग अलग राजधानी के, बाबा ने बताया, लेकिन वो आपस में आते हैं, खेल करते हैं। वहां तो इतने साधन है, दूसरी राजधानी से दूसरी राजधानी में आना, एक राजधानी से दूसरी राजधानी में जाना कोई देर थोड़ी लगता है। पुष्पक विमान में बैठे, बटन दबाया, पहुंच गए। तो वो राधे अलग राजधानी की और श्री कृष्ण अलग राजधानी का बचपन में खेल करते हैं, लेकिन बाद में स्वयंवर के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जैसे फील करते हो ऐसे और कोई समझते ही नहीं है, इतना भी नहीं समझते हैं। बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि बाप जानी जानन हार है। दुनिया में कहते ना भगवान जानी जानन हार है, बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं हर एक के दिल को जानता हूँ। कई बार बाबा के पास ना बच्चे आते थे, बाबा उनके दिल की बात को कह देते थे, फिर बच्चे आपस में शेयर करते थे। बाबा से मैं पास गया, बाबा ने तो मेरे दिल की बात कह दी, फिर दूसरा जाएगा बाबा को बैठ जाएगा, कहेगा बाबा देखो आज मेरे दिल की बात कहते हैं, तो बाबा समझ आते संकल्प लेकर के आया। तो बाबा फिर क्या कहते थे, मैं क्यों बताऊं, तुम नहीं जानते अपने दिल की बात को, तुम जानो तुम्हारे मन में दिल में क्या संकल्प चल रहे। बाबा को इसके लिए थोड़ी आया कि तुम्हारे दिल की बात को देखे और सुने। बाबा के प्यार का जो बाबा का जो बच्चों का बाबा के प्रति जो प्यार है ना, वो दिल का जवाब ऑटोमेटिकली मिलता है। कई बार कई भाई बहने क्या करते हैं, कहेंगे बाबा को हमारा ये मैसेज दे देना। बाबा भी हंसते हैं, कहते देखो ना कैसे बच्चे हैं, बाबा को क्यों मैसेज दें, खुद नहीं दे सकते हैं, योग में दो। बाबा ने फिर क्या कहा, अरे बाबा तो रोज मुरली में बताते ही हैं, हर बार कहेंगे बाबा को हमारी ये बात कह देना, मेरी अवस्था नहीं बनती। अरे अवस्था नहीं बनती तो बाबा क्या करेंगे, खुद बनानी है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातें बाबा को के पास मैसेज नहीं भेजो, बाबा से रूहान करो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात युक्ति बताई है। तो बाबा क्या कहते हैं अभी ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कि वे जानी जानन हार है। अब तुम बच्चे कई बार कई आपको बता दे ऐसे कहेंगे हमारे घर के अंदर एक कुआं है, उस कुआं काम नहीं करता, बाबा को पूछो। अब बताओ ऐसी ऐसी बातें बाबा कहेगा, तो कई बच्चे ऐसी ऐसी बात ही करते हैं, फिर कहेंगे मैं क्या करूं, हमारे घर में बच्चा है वो बीमार रहता है। अब इतना तो समझ है ना कि बच्चा बीमार है, डॉक्टर की दवा देनी है और उसका इलाज कराओ, दवा और दुआ से ठीक होगा। फिर कहेंगे अच्छा भोग लगाना बात अलग है, लेकिन कहेंगे बीमार रहता है, बीमार रहता है पता है कई जन्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा जान जाते हैं कितना प्यार है बाबा से, कितनी लगन है। प्यार से करो ना तो देखो हर कार्य सहज और हल्का हो जाता है। तो इसलिए बाबा बच्चों को बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। तो अभी बाबा बता रहे हैं तुम बच्चे समझते हो बाप तो आकर के नॉलेज देते, बाबा का काम क्या है बच्चों को नॉलेज देना। नॉलेज पाठशाला में मिलती है, पाठशाला में एम ए ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छी छी दुनिया में राज्य कर नहीं सकते। अब इस दुनिया में राज्य करके देखो तो क्या हाल है, एक दिन आसमान पे दूसरे दिन धरती पे कर देते हैं। तो बाबा कहते तुम इस छी छी दुनिया में राज्य कर नहीं सकते, राज्य करेंगे कहाँ पर, कहाँ पर करेंगे। बाबा ने कहा गुलगुल दुनिया में, ये दुनिया छीछी, गुलगुल मीन्स बहुत प्यारी से फ्लावर है ना, बहुत अच्छी से। तो बाबा कहते तुम राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में, राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, सतयुग में राजयोग भी नहीं सीखेंगे, वहां तो गुलगुल दुनिया में राज्य करेंगे। संगम पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, ये बेहद की बात है। बाप कब आते हैं ये किसको भी पता नहीं है, घोर अंधेरे में है ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते। बाबा आकर के ज्ञान सूर्य है, लेकिन जापानी लोग जो है ना, उनका सिंबल जो है वो सूर्य है, वो अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि जापान में लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते, वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ही ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश हो जाता है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया होती है। ये बेहद का बड़ा घर है। कवि बाबा कहते बेहद का नाटक है। आज बाबा ने कहा ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है, सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते। पहले जमाने के राजा थे, दिन को सो जाते थे और रात को काम करते, रात को ही अपनी सभाएं लगाते थे। कई कई राजा ऐसे होते थे रात को वेश बदल करके कहां कहां जाकर के अपने राज्य की जानकारी लेते थे। और अभी तो इतने विस्तार हो गया है, कहां कहां फैक्ट्रीज में रात भर काम भी चलता रहता है। तो बाबा बता रहे हैं कितना बड़ा मांडवा है, सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं, रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहां कहां चलता। साकार में बाबा बताते थे ना कि रात के टाइम वो शिप आते थे दूर दूर से। रात को बाबा जागते थे क्योंकि शिप आते थे, वो आकर के काफी माल लेके जाते थे। तो बाबा भी अपना अनुभव बताते, अभी तो रात्रि भर दिन भर काम कहाँ कहाँ चलता ही रहता है ना, ये अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलते होती ना, मिल्स होती है कहाँ पर, तो रात को चलती है। ये है हद के दिन रात, वह बेहद की बात। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसकी बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं, बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं, तो जरूर किस में प्रवेश करेंगे। अब शिव बाबा बता रहे हैं तो मैं जरूर किसी के तन में तो आऊंगा ना। पावन मनुष्य तो होते ही हैं सतयुग में। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे कि विकार के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, तो वह कितना अच्छा बता रहे। एक तरफ कहते विकारों के बिना नहीं चल सकता, और देवताओं की क्या महिमा कहते संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो बाबा बता रहे हैं अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उनके मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, वहां पर दूसरे धर्म या कुछ ऐसे ऐसे लोगों को उन्हें अलाउ करते हैं। कई मंदिर ऐसे जो ब्राह्मण नहीं है पतितों को अलाउ ही नहीं करते हैं। जब मंदिर इतना शुद्धता से बनाते हैं तो फिर वो विकारी कैसे हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बिगड़ कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच नहीं कर सकता, परंतु आजकल तो पैसे से सब कुछ होता है। पैसे से क्या नहीं कर लेते हैं ना। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब वो विकारी तो वह है भी ब्राह्मण है, भल ब्राह्मण को बुलाते हैं, जन्म तो विकार से हुआ ना। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। ये तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होता है। दुनिया विकारी, सारी पूजा भी विकारी करते हैं और स्थापन करने वाले भी विकारी हैं। तो बाबा कहते हैं तो पूजा भी विकारियों से होता है, निर्विकारी कहाँ से आए, निर्विकारी होते ही हैं सत्युग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। आजकल कोई बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, भले उन्होंने विकारी नहीं है लेकिन जन्म तो विकार से लिया, कई जन्मों का हिसाब किताब भी है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक बात बताई है, ये सारा रावण राज्य एक जगह नहीं, पूरा विश्व के अंदर रावण राज्य है। बाप ने एक बात बताई है, ये सारा रावण राज्य राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, और रावण राज्य में है संपूर्ण विकारी। सत्युग में पवित्रता थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो सत्युग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ पांच विकार तो होते ही नहीं, वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करेंगे, भगवान को पुकारते आकर के पतितों को पावन बनाओ सुख दो, तो बाबा कहते मैं आकर के थोड़ी पतित राज्य बनाऊंगा। तो भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सत्युग में अगर पतित है तो पुकारते ना, सत्युग में तो सब पावन है, वहां तो कोई पतित है ही नहीं। तो बाबा कहते सत्युग में अगर पतित है तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं है, सुख में कोई याद ही नहीं करते। कहा जाता है सुख में कोई याद नहीं करता है, परमात्मा की महिमा करते हैं कि सुख के सागर है, पवित्रता के सागर है। कहते भी हैं शांति हो, दुनिया में कहते रहते ना पीस स्थापन हो, पीस हो, बहुत लड़ाई झगड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में तो सुलह अथवा शांति कराना होगा। शांति कब होती है? जब आपस में मिले हुए हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो बाबा कहते हैं अब सारी दुनिया में उनकी आपसी मतभेद को खत्म करके सुलह करना, वो कैसे करेंगे वो तो जानते ही नहीं है। कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में मनुष्य शांति कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आपस में लड़ते हैं तो सुलह शांति कराना होता है, वहां तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं, और विनाश के लिए बाबा क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। ऐसी हालत होगी कितना भी समझाओ, हालांकि समझते विनाश होगा, ये होगा ऐसा होगा, लेकिन बुद्धि में फिर भी नहीं बैठता, कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह आत्माओं का घर है शांति धाम, ये है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी क्या करना है? इस दुख धाम को देखते हुए भी बाबा कहते हैं भूलते जाओ, रहना इस दुख धाम में है लेकिन बुद्धि से डिटैच होना है। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको सुख धाम शांति धाम में जाना है। बाबा क्या कहते हैं? दुख धाम को देखते क्या करना है? बुद्धि से डिटैच, और बुद्धि में क्या रहे? बस अब तो हमको शांति धाम जाना है, ये आत्मा कहती है, आत्मा ही रियलाइज करती है। आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहती है, मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ ना सके। गीता भी कह, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला ही मेरे को समझ सकता है। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को क्या कहते हैं, दुनिया वाले तो समझते नहीं, बच्चों में भी क्या है, बाबा क्या बोलते हैं, वो भी नंबर वार है। उस दिन बाबा ने क्या कहा, नंबर वन बनना है। तो बाबा कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ वो कोई तो समझते नहीं है। बाप कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया है कि मैं बिंदी हूँ। बाबा भी क्या कहते, मैं बिंदी हूँ और तुम भी बिंदी हो। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा। अब चक्र को याद करने से क्या क्या बातें याद आएंगी, इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा और चक्र भी याद आएगा। घर भी याद आएगा, बाप भी याद आएगा, राजधानी भी याद आएगी, कितनी बातें याद आ जाएंगे, अपने सारे पांचों स्वरूप भी याद आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा और चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी, सारे विश्व के अंदर क्या क्या हुआ है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है, लेकिन पूरे चक्र को तो तुम बच्चे जानते हो, कितनी लड़ाइयां आदि लगी। सच्चू में तो लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है, कहां राम राज्य और कहां रावण राज्य। बाप कहते हैं, अभी तुम जैसे कि कहां पर हो, कहां राम राज्य कहां रावण राज्य, अभी संगर युग में किस राज्य में हो तुम, जैसे कि कहां पर हो, कौन बताएगा भाइयों में से, बोलो, कोई भी बोले हैं। बाबा ने कहा, देखो तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य, क्योंकि बाबा के साथ है ना, इस ईश्वरीय राज्य में कितना सुख है, ऐसा सुख तो कहीं मिल ही ना सके। बाबा के साथ हर प्रकार के सुख की अनुभूति करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो। दुनिया नहीं समझती, हम बच्चे समझते हैं कि बाबा कितना सुख दे रहा है, जो सुख लेता है उसको अनुभव होता है, जो नहीं लेता बैठे हुए भी अनुभव नहीं कर पाता ना। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर यहाँ आया हुआ है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं है, खुद राजा ही भी नहीं लेते। कितनी वंडरफुल बात है, बच्चों को भेज देते हैं, ना खुद राज्य करते हैं, ना खुद राज्य में आते हैं और ना खुद राजा ही लेते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बना करके खुद डिटैच हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई भी लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से क्या होता है अब बताओ, बाबा कहने से माताएं बोलो है बहुत खुशी का पारा चढ़ जाता है। माताओं को देखो, बात सेवा करती रहेंगी, बाबा बाबा कहती रहती है, बाबा कहा खुशी में झूम जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना, माताएं तो खुशी में झूमती रहती बाबा बाबा करके। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अति इंद्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते। क्या साक्षात्कार होगा कि मैंने क्या पुरुषार्थ किया, हम जाकर के क्या बनेंगे, जैसे जैसे नजदीक आता है ना, बच्चा पढ़ता है तो उसको पता रहता है मैंने अच्छा पढ़ा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बाबा कहते हैं जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं, अति इंद्रिय सुख का भी बच्चों को नंबर वार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते, कई तो बाबा को याद करते खुशी में रहते, और कोई कहते हैं बाबा की याद ही नहीं रहती, बाबा मेरे को क्यों भूल जाता है। अरे बाबा भूला थोड़ी है, बाबा भूला नहीं है, बस आदत पड़ी हुई, भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ। बाबा कहते कभी नहीं बोलो मैं भूल जाता हूँ, बाबा मेरे साथ है, हम बाबा की छत्र छाया में है, इस बात को भी पक्का करना है। कोई तो बाप की याद में बड़ा खुशी में रहते हैं, अब बाबा को बता दो, जो बहुत खुशी में रहते ना तो आज बाबा को बता देना। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे, कौन सी फीलिंग अभी ध्यान से सुनना, ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। ऐसे बात करते हैं बाबा से, करते हैं कि नहीं, अमृत वेले जब योग के टाइम बाबा कहते ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे तो हमें कितना न सुख मिलता है। बाप को याद करते क्या होना चाहिए है? बाप को याद करते रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बाबा ने कहा प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। शुरू में होता था जो बंदेलियां थी वो प्रेम के आंसू आते थे, बाबा के सामने आती थी इतना आंसू बहाते, बाबा कहते थे दुख के आंसू नहीं बहाना, प्यार के आंसू आए तो कोई हर्जा नहीं है, दुख के नहीं बहाना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है बाबा, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से खीर सागर में ले जाते हो, सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितना गदगद होते हो। बाबा के सामने बैठते थे, बाबा जब मुरली चलाते थे, बाबा जब याद कराते थे तो सारे खुशी में ऐसे गदगद हो जाते थे, बाबा ने याद कराया तो गदगद हो गए, और बाबा से थोड़ा दूर हुए फिर भूल जाते थे। बाबा कहते नहीं सारा दिन वो फीलिंग आनी चाहिए। तो बाबा कहते बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितना गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। ये बड़े से बड़ी एकज भूल है, नंबर वन गीता में ही भूल कर दिए। बाबा इसको बहुत ध्यान खिंचवाते थे, बाबा कहते थे जब उनकी बुद्धि में बैठेगा तब उनको ये भी बुद्धि में आएगा कि हमें अपना शिव बाबा से वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं नंबर वन गीता में भूल कर दिए, फिर बाबा कहते देखो ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है, बाप आकर के ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ वह श्री कृष्ण। अब बताओ कौन है, बाबा कहते थे ऐसे पूछो कि पतित पावन मैं हूँ वह श्री कृष्ण, तुमको तो मैंने राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया था, गायन भी मेरा है ना, कौन सा गायन है, अकाल मूरत है, अजोनी है, अखंड है। तो बाबा कहते ये सारा गायन किसका है, वो शिव बाबा का ही तो है ना, गायन भी तो मेरा है, अकाल मूरत अजोनी, श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़ी कर सकते हैं कि वो अकाल मूरत है, तो बाबा की है, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबर वन है, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती है, ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, ज्ञान सुना भी अच्छा लेते हैं, लेकिन चलन भी अच्छी चाहिए, ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं है, जो पहले आएंगे वह जरूर इतने ताकत वाले होंगे, पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना, हीरो हीरोइन का पार्ट किसको मिला हुआ है, किसको मिला हुआ, हीरो हीरोइन का पार्ट बाबा कहते तुम बच्चों को तो है ही, भारतवासियों को मिला हुआ है, हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो, श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो हर कदम पर ऐसा लगता है कि शक्ति है, बल है, बाबा का सहयोग है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुष्टर है, बहुत तेज है, देखती रहती, कभी बुद्धि इधर जाए तो सही, वो फटाफट झपटा मार लेती। तो बाबा क्या कहते हैं, माया भी बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती। माया के कितने रूप हैं। अभी क्या होता है, चलते चलते कोई न कोई बात में संशय आया, बुद्धि इधर गई तो जबरदस्त धोखा मिल जाता है। इसलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि होकर रहो। बाबा जो बता रहे हैं श्रीमत पर चलते ध्यान देना है। माया भी बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती है। अब बाबा क्या कहते हैं, बाबा प्यार का सागर है तो तुम बच्चों को भी बाप समान बाबा प्यार का सागर है तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए, गंदी सी गंदी आदत है विशेष सागर में गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, कितनी बच्चियां मार खाती हैं। शुरू शुरू में जब बाबा के बच्चे बने तो जब इतिहास में कई बातें हैं, कितने बहनों ने कितनी कठिनाइयां से देखी बाबा का बनने के लिए, मार भी खाई, कितने कष्ट उठाए। तो बाबा कहते देखो कितनी बच्चियां मार खाती हैं। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कोई कोई तो बच्ची को कहेंगे भल पवित्र बनो, अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। कई कई माँ बाप होते थे कहते अच्छा बच्ची को दे दो पवित्र बन जाए, हमारा बोझ हट जाएगा। तो फिर बाबा कहते अरे पहले खुद तो पवित्र बनो, बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा। अभी भी कई बार ऐसा होता है दुनिया में भी, लोगों को ज्ञान नहीं है तो समझते हमारे घर में बच्ची थोड़ी ठीक नहीं चलती है, कहते इसको ब्रह्मा कुमारी आते हैं, यहाँ कई आते हैं, हमारी ये बच्ची है इसको हम यहाँ रखना चाहते हैं। वो समझते ये जैसे कि अनाथालय, कोई अनाथालय थोड़ी है, जो कोई इधर न चले, जो कोई ना हो तो यहाँ आके आ जाए। तो बाबा कहते कई कई माँ बाप ऐसे भी समझते थे चलो खर्चा भी बच जाएगा, बच्ची को भेज दो, शादी करेंगे पता नहीं उसके भाग्य में क्या होगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है पहले धारण करना होता है, धारण करे उनकी धारणा हो। फिर जब आते हैं तो कोई भी बहने आती है पहले 5 साल तक ट्रायल में रखते हैं, उसको कहते हैं अच्छी तरह से देखो समझो, बाद में उनके फैसला होता है। तो बाबा जी को बता रहे हैं कई तो खर्चे आदि की बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है, घर भी सुखी मिले या ना मिले। कई ऐसे भी थे चलो भेज दो, जहाँ सुखी रहे या ना रहे इससे अच्छा वहां जाए। बाबा के घर में तो सब सुखी रहते वो बात अलग है, लेकिन बाबा कहते आजकल तो खर्चा भी बहुत लगता है, गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह होता है, कई गरीब दे भी देते हैं, मोह होता है, मोह के कारण बच्ची आई ज्ञान पूरा नहीं है, फिर भाग जाती है, फिर चली जाती है अपने घर। फिर बाबा बता रहे आगे एक भीड़नी आती थी, उनको ज्ञान में नहीं आने दिया। बाबा कई बार बताते ना एक बार भीलनी आती थी, उसको ज्ञान की लगन थी लेकिन उनके समाज वालों ने उसको नहीं आने दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान को ही कहे। शुरू शुरू में बहुत डर होता था, ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे जादू लग जाएगा और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर बार छोड़ देंगे, तो अपने समाज वाले आने नहीं देते थे। अभी तो वो खुले दिल से सबको आने देते हैं। आगे एक भीलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे श्री कृष्ण। तो बाबा कहते जादूगर भी है रहम दिल भी है, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण, पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे, ज्ञान का वैराग्य थोड़ी होता है। बाबा कहते ज्ञान मिला तो भक्ति का वैराग्य होता है, ज्ञान का वैराग्य नहीं होता। बाबा शब्दों को करेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये अक्षर राइट है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य दिलाते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य करते, कुंभ मेला चल रहा है ना, वहाँ कितने सन्यासी आते, कितने सन्यासी आए हुए, हर एक की अपनी अपनी हिस्ट्री है। कोई कैसे बन गया, कोई कैसे बन गया, कोई तो वैराग्य से बना, कोई मजबूरी से बना, कोई कैसे घर से भागा तो बन गया, तो कई प्रकार के सन्यासी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में तो बैठता ही नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट निर्विकारी और हेल्दी था, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा भी बहुत थोड़ों को होती। भारत कैसा था, हम वहाँ कैसे राज्य करते थे, बाबा कहते ये सब बातें भी बच्चों में भी थोड़ों को धारण होती है। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो क्या बनेंगे, जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। बाबा से मीठी मीठी रूहान, ओहो बाबा आप हमें क्या से क्या बनाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया याद करने ही नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो, मैं ही तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम याद नहीं करेंगे, मैं तुमको विश्व का मालिक, कोई भी दुनिया में भी कोई किसको थोड़ा सा दे देता है तो बार बार याद आती है। तो बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे। बोतों को माया के बहुत तूफान आते हैं। बाप समझाते हैं ये तो होगा ही, छोटी छोटी बातें आएंगी, तूफान आएगा। बाबा कहते ये आएंगे ही, यही बातें मजबूत करती हैं। तो बाबा कहते हैं बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं ये तो होगा ही, अब डरना नहीं है, क्यों आया कैसे हुआ। ड्रामा में नूंद है, स्वर्ग की स्थापना होनी है तो छोटी छोटी बातें तो आएंगी ना। सदैव नई दुनिया में तो रह नहीं सकते, चक्कर फिरेगा तो जरूर नीचे उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने क्या किया है बताओ, माया इतनी जबरदस्त है, क्या किया है बाबा ने। कोई अप्रैल का महीना होगा, मुरली उस समय की चली होगी, तो बाबा ने कहा इस समय माया ने सबको, अब बोल दो, अप्रैल फूल बना दिया। अप्रैल फूल आता ना, फर्स्ट अप्रैल आती है तो हर एक का फूल बनाते, उनको मूर्ख बनाते रहते, तो माया ने क्या किया सबको मूर्ख बना दिया। अप्रैल के मास में मुरली चली होगी तो वो दिन होंगे आसपास, तो बाबा भी बच्चों को बता रहे हैं इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया। बाप आकर के गुलगुल बना दे, माया मूर्ख बनाती है, सारा समय मूर्खों की बातें बनाती है, बताती रहती है, और बाबा आकर के क्या करते हैं गुलगुल फूल जैसा बनाते हैं। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर के गुलगुल बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा हमें क्या से क्या बना दिया। बाबा ने देखो क्या से क्या बना दिया। बाबा कहते हैं बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है, ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा आप खीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। वरदान सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने सर्व संबंध सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सब बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन बड़ा अच्छा है, जोश में आना ही मन का रोना। जोश में आते जो अंदर फीलिंग है ना, तो बाबा कहते हैं जोश में आना ही मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। उस दिन भी बाबा ने कहा ना बाबा के पास हर बच्चे की फाइल है, तो बाबा क्या कहते कौन सी फाइल खत्म करो, जोश में आना ही मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अब अपने मनसा शक्ति द्वारा क्या करना है, साकाश देने का। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः ही साकाश फैलाएंगे। अच्छा ओम शांति ओम शांति। अच्छा जो भाई बहने एक रात के लिए आए हैं या दो रात के लिए शांति में से, वो हाथ खड़ा करें। काफी सारे हैं। अच्छा ओके, दोज डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हु आर स्टेइंग इन पांडवन प्लीज रेज योर हैंड। ओके आफ्टर मेडिटेशन ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टे बैक, टूडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। अच्छा डबल विदेशी भाई बहने बाबा के घर में आए हैं और इस टर्न में डबल विदेशी भाई बहनों का ग्रुप भी बहुत बड़ा है। और जैसे कि पहले बताया था एनसीसी की इनकी वार्षिक मीटिंग भी है और इस टर्न में और अगले टर्न के अंदर देश विदेश के जितने भी देश ने विदेश के जितने भी सेंटर्स हैं, सेंटर्स को चलाने वाले नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर, तो सभी की मीटिंग है जिसके लिए हमारी सभी सीनियर बहनें अभी एक दो दिन में पहुंच जाएंगी। अच्छा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो भी पार्टी से आए हुए भाई बहन है, जो भी नीचे से आए हुए भाई बहन है, सबको ध्यान देना है। सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का भोजन ऊपर डाइनिंग हॉल में है। नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ काम चल रहा है, वहां पर खड़े होने और बैठने की जगह नहीं। कुछ भी हो जाए वहां पर नहीं जाना है, सबको ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाना है। अगर नहीं भी चढ़ सकते वहां पर लिफ्ट है और वहां पर ही आप सबका नाश्ता और भोजन का प्रोग्राम है। इस बात के लिए आप सबको सहयोग देना। एक तो बाबा बहुत सहयोग देते हैं आप सबको, एक एक रात या दो रात रहने के लिए, बाबा के घर अनुभव करने के लिए सुंदर मौका मिलता है। दूसरा सहयोग देना है आप बच्चों को, नीचे कोई भी भोजन या नाश्ता नहीं करेंगे, सबको ऊपर के डाइनिंग हॉल में। अगर नीचे करने लगते हैं काफी लंबी लाइन, जैसे लाइन में खड़े हुए अच्छा नहीं लगता है, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे लाइन में खड़े रहे। रॉयल्टी से जाओ ऊपर, रॉयल्टी में बैठो, नीचे के डाइनिंग हॉल में किसी को भी नहीं जाना है, सबको ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाना है। रॉयल बाप के बच्चे अपना रॉयल्टी से, बाबा ने टेबल चेयर लगाई है, आराम से बैठो, वहां पर बैठ करके नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन स्वीकार करेंगे। ओके, नाउ विल सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस, आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक, टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, सारे दिन का प्रोग्राम उनको बताया जाएगा।